मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मित्रों, आज छोटी छोटी घटनाओं के रूप में आप सबसे डिस्कस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि मुख्य विषय के रूप में आप सबसे डिस्कस करने के लिए मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज महिला दिवस है और मेरा यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस महिला दिवस से ही संबंधित है। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं, और इसे अगर आप नाम देना चाहें आज के इस मेरे डेली ऑडियो लेक्चर के विषय को, तो आप नाम दे सकते हैं महिला टॉपिक पर तैयारी की। आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इस टॉपिक की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैं विशुद्ध रूप से तैयारी कैसे करनी चाहिए इस पर बात करने जा रहा हूं। मैं किसी पर्टिकुलर एंगल को लेकर के और उसे डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, आप अपने मेंस के पेपर उठा करके देखिए, प्रीवियस ईयर्स के मेंस के पेपर, आप पाएंगे कि कोई भी साल ऐसा नहीं मिलेगा आपको जबकि मेंस में कम से कम दो क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक पर ना पूछे गए हों। दो क्वेश्चन, हाँ, ये जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका जो फैलाव होता है आपको तीनों चारों पेपर में मिल जाएगा। तीनों चारों में जो इकोनॉमिक्स वाला पेपर है, जो तीसरा पेपर है, उसमें हो सकता है कि कभी कभी न मिले। अदरवाइज जो आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है और फोर्थ पेपर है, उन सभी पेपर्स में महिला से संबंधित टॉपिक्स की संभावना रहती है। फर्स्ट पेपर में तो आपके बकायदे सिलेबस में ही दिया हुआ है। सेकेंड पेपर में आप जब जाते हैं तो उसमें वल्नरेबल सेक्शन की बात कही जाती है, यानी कि जो कमजोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, उसकी बात कही जाती है। और दुर्भाग्य से महिलाओं को हमें रखना पड़ता है वीकर सेक्शन में, क्योंकि हमने ऐसी स्थिति बना रखी है। और इसके बाद जब हम फोर्थ एथिक्स के पेपर में जाते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो नैतिकताएं हैं, जो सामाजिक संकट हैं, वो हमें दिखाई देने लगते हैं, तो एथिक्स का भी पार्ट बन जाता है। आप यूं कह लीजिए कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया तो मेंस के दो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए। जहां तक प्री में पूछे जाने की बात है तो स्वाभाविक है कि अगर कोई घटना घटी है या सरकार ने कोई कानून बनाया है, कोई विशेष बात हुई है, कोई रिपोर्ट आई है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि प्री में पूछ लिया जाए। अदरवाइज प्री में इस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम होती है, यानी कि मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि इसकी तैयारी आप करेंगे कैसे। मैंने रोल बताया कि इस टॉपिक का आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रोल है, और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और इंटरव्यू में जाती हैं तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कि आपको आपसे महिलाओं की स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वहां भी ये आपके लिए मददगार है। दोस्तों, जब आप महिला टॉपिक की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले अगर हम करेंट्स को लेकर के चलें तो देखिए, आज महिला दिवस है, यूएनओ महिला दिवस मनाने लगा है, तो इस बार का थीम क्या है, इस बार का विषय क्या है। यूएनओ हर साल एक थीम देता है, तो इस बार का जो थीम है वो है वीमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए COVID-19 वर्ल्ड। यानी कि ये COVID-19 जो हुआ, इस उन कोविड के समय में जो महिलाएं हैं कैसे इक्वल फ्यूचर, मतलब समान भविष्य के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और वीमेन इन लीडरशिप। चलिए हम कोविड को हटा देते हैं, यानी कोविड, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि खासकर इस दौर में महिलाओं को काफी संकट का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सब कोई घर पर ही है और घर के केंद्र में महिला होती है, तो सीधी सी बात है कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। यहां तक स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं कि इस कोविड के दौरान घरेलू संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़े हैं, वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़े हैं, मतलब जो खासकर थानों में जो रिपोर्ट आई है पति और पत्नियों के झगड़ों की, उनकी संख्या बहुत बढ़ी है, और साथ ही साथ तलाक की भी जो अर्जियां आई हैं वो बहुत ज्यादा आई है, इसीलिए शायद COVID-19 की बात यहां कही गई है। लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट है वो है लीडरशिप। इसका मतलब है कि हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए, स्पेशली मेंस के लिए, लीडरशिप, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। हम एक कल्पना कर सकते हैं, और ये कल्पना एकदम कोरी कल्पना नहीं है, इसके पीछे बेस, इसके नीचे जमीन है, और जमीन ये है कि यूएनओ की का ये मेन थीम है। फिर जब हम लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके की लीडरशिप, तो देखिए, जब हम पॉलिटिक्स में देखते हैं तो संसद में और बाकायदे विधानसभाओं में 30% रिजर्वेशन की बात की जाती है, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया जा सका है। इस पर एक प्रश्न तैयार हो सकता है, लेकिन पंचायतों में दे दिया गया है, और जो पंचायतों में दिया गया है, आप देखिए वहां रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, तो उसके बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने में आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट। गांव में महिला लीडरशिप इमर्ज हो रही है, और साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्व सहायता समूह महिलाओं के, वहां से भी लीडरशिप इमर्ज हो रही है। तो ये एक अलग हो गया, मतलब कि जो लोकल बॉडीज हैं हमारी, वहां महिलाओं की लीडरशिप है, लेकिन जो हमारी वैधानिक बॉडी है, अभी संसद और राज्य की विधानसभाओं, वहां नहीं है। इसके साथ ही साथ एक और लीडरशिप का महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकारी नियम है कि एक महिला निदेशक होगी, लेकिन अभी भी इस कानून का बहुत सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, नंबर वन। इसके बाद एक पॉइंट आता है इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। भारत के उद्यमों में भी महिला उद्यमियों का बहुत कम नेतृत्व है, लेकिन कुछ बहुत तेजी के साथ उभर कर आ रही हैं, तो मतलब भविष्य की अच्छी संभावनाएं हैं। तो जब हम लीडरशिप को देखेंगे तो हम इसे इन इन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बांट करके देखेंगे और इन पर निगाह डालेंगे, और अब जो अखबार में आर्टिकल्स आएंगे या जो कुछ भी इससे जुड़ी हुई घटनाएं होंगी उन पर ध्यान देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पूरे टॉपिक को लेकर के चलें, अभी तो मैंने टॉपिक के एक सेक्शन की बात कही थी, है ना, जो यूएनओ ने प्रोवाइड कर दिया लीडरशिप, लेकिन आइए अब हम इस टॉपिक को पूरे तरीके से लेकर के चलते हैं। तो आप इसकी तैयारी करेंगे कैसे? मैं तैयारी करने के एक तरीके की ही आपसे बात कर रहा हूं, और इसे आप दूसरे टॉपिक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को एक शब्द में लेकर के नहीं चल सकते कि महिला पर हमने तैयारी कर ली, नहीं। महिलाओं को आपको कई वर्गों में बांटना पड़ेगा, इसलिए कि महिलाओं के बहुत सारे वर्ग हैं, और साथ ही साथ उन वर्गों की समस्याएं भी अलग अलग तरीके की हैं। और महिलाओं की जो समस्या है तभी से शुरू हो जाती है जब वह गर्भ में आती है, जिसे हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या, वहां से शुरू हो जाती है। तो आप उम्र के हिसाब से इनका एक वर्ग बनाएंगे कि गर्भावस्था में, इसके बाद वो शिशु अवस्था में है, तो वहां से उसके पोषण की समस्या शुरू हो जाती है। फिर जब वो बड़ी होती है तो पोषण की समस्या तो रहती ही रहती है, शिक्षा की समस्या शुरू हो जाती है कि उसको कितना पढ़ाया जाएगा कितना नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बाद वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है तो परिवार में उसके साथ भेदभाव किया जाने लगता है, भाई के साथ में, पुरुष वर्ग के साथ में, उसको उसका सोशलाइजेशन इस तरीके से किया जाने लगता है ताकि वो अपने को कमजोर महसूस करने लगे। तो ये हमारी सामाजिक संरचना की एक देन हो गई। इसके बाद जब वो विवाह की स्थिति में आती है, युवा होती है, तब फिर विवाह की समस्याएं हो जाती हैं, उसमें जाति प्रथा खड़ी हो रही है, तो उसमें दहेज आ रहा है सामने, और दुनिया भर की ससुराल चली जाती है, तो फिर वहां प्रताड़नाएं शुरू हो जाती हैं, तो ये शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर आजकल सिंगल पेरेंट्स के रूप में मदर के की चर्चा भी होने लगी है, डिवोर्स हो गया है और महिला अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, एक अलग वर्ग बन जाता है। तो इस तरीके से आयु के आधार पर वर्ग बनता है, शिक्षा और अशिक्षा के आधार पर एक शिक्षित महिला और अशिक्षित महिला का आप वर्ग बनाते हैं, स्थान के आधार पर एक ग्रामीण महिला और एक शहरी महिला, उसके आधार पर आप वर्ग बनाते हैं, कार्य के आधार पर आप वर्ग बनाते हैं कि एक कामकाजी महिला है जो नौकरी कर रही है या अपना व्यवसाय कर रही है, और दूसरी तरफ एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को लेकर के उसके कार्य का कोई मूल्यांकन नहीं होता है हमारी जीडीपी में, जबकि जो कामकाजी महिला है इसका मूल्यांकन हो जाता है, राइट। यहां पर आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपको जब आप ग्रामीण महिलाओं की बात करेंगे तो फिर वहां भी ग्रामीण महिलाओं का कैसे शोषण हो रहा है, डबल शोषण हो रहा है, वो किस तरीके से वहां की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका शिकार हो रही हैं, आपको उन पर अलग से ध्यान देना होगा। जब आप कामकाजी महिलाओं की बात करेंगे तो वहां भी आपको अलग तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी, उनके साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है, उन्हें समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, वहां उनकी सुरक्षा की समस्या हो रही है, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जब प्रमोशन की बात आती है तब उनके साथ भेदभाव होता है। इस तरीके से वहां फिर आपको जब वो प्रसव में होती है तो पता लगा कि उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, तो इस अच्छे अच्छे काम उनको नहीं दिए जाते हैं चैलेंजिंग, तो वहां जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अलग तरह की समस्याओं का सामना करना उन्हें करना पड़ता है, तो उन्हें भी आपको देखना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अलग अलग आधार पर महिलाओं को लेकर के चलेंगे, क्योंकि इनकी समस्याओं के स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। यहां तक कि जो धनी वर्ग की महिलाएं हैं, मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं और निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, इनकी भी समस्याएं अलग अलग हैं। कुछ समस्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं, कुछ समस्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं। इसको देखने के बाद फिर आप आएंगे सीधे सीधे अधिकारों को लेकर। अधिकारों को फिर आप अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या राइट्स दिए हुए हैं मौलिक अधिकार के रूप में, उसमें आप मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां ले सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप अनुच्छेद को भी याद कर लें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। वो एग्जामिनेशन में आपके आंसर को स्ट्रांग बनाएंगे, प्रभावशाली बनाएंगे। इसके बाद फिर आप कानूनी अधिकार पर आइए कि उनको लेकर के क्या क्या कानून बनाए गए हैं। दहेज विरोधी कानून है, समान वेतन पर कानून है, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध कानून है, पिता की संपत्ति में अधिकार संबंधी कानून है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ढेर सारे कानूनों के चक्कर में मत पड़िए, बहुत लंबी सूची है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कानून है जिनका सही में सकारात्मक प्रभाव इन पर पड़ सकता है या पड़ रहा है, कानूनी अधिकार देख लीजिए। कानूनी अधिकार के बाद आप देखिए कि इनके लिए क्या प्रशासनिक व्यवस्था की गई है ना, जैसे पुलिस में इनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इन्हें आप प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ले सकते हैं। जैसे अगर आपको महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिस होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। इसके बाद आप सामाजिक मूल्य पर आ जाइए कि जो सोशल वैल्यूज हैं वो सोशल वैल्यूज क्या सही में बदल रहे हैं, सोशल वैल्यूज बदल रहे हैं। इसके बाद फिर सीधे सीधे आप OTT, अभी खूब बातें हो रही हैं, आप देखिए कि ओवर द टॉप, मतलब जिसमें नेटफ्लिक्स और इन सब पर बात हो रही है कि कैसे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे हैं, और डेफिनेटली इनसे जो महिला की गरिमा है वो बाधित हो रही है, गिर रही है। इनको लेकर के सरकार चिंतित है, हमारा समाज भी चिंतित है। अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। तो इस तरीके से जब अलग अलग चीजों को आप देख लेंगे तब जाकर के इस टॉपिक पर आपकी अच्छे से तैयारी होगी। और एक बार अगर आपने थोड़ी सी तैयारी इस पर कर ली तो मान करके चलिए कि मेंस एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए महिलाओं से संबंधित, डेफिनेटली आप उसका बहुत अच्छा तथ्यपूर्ण उत्तर दे पाएंगे। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तथ्यपूर्ण उत्तर, मैं इसलिए कह रहा हूं तथ्यपूर्ण उत्तर क्योंकि महिलाओं पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो उस प्रश्न के उत्तर देकर ना आता हो। लेकिन अगर आप सामान्य उत्तर देते हैं तो आपको 10 में 2 नंबर मिल जाएंगे, जिसका मिलना ना मिलना बराबर है। लेकिन अगर आप तथ्यपूर्ण उत्तर देते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे, जिसका मिलना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस टॉपिक की आप कैसे तैयारी करेंगे इस पर मैंने कुछ बातें की हैं, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उन नौजवान साथियों के नाम हैं अजय मौर्य, कैलाश सिंह लोधी और मनीष चौरसिया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं रीपा दहिया, रश्मि पैकरा, हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से, ज्योति प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, हेमराज वर्मा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से, अजय मणि त्रिपाठी और शिविका मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।